سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. پچھلے ایک دو دن سے ہم نے ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو شروع کی ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یعنی اربوں کھربوں لوگ جو ہیں وہ گرمی اور دھوپ کے اندر پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور یہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت اس وقت عزت عطا فرمائیں گے. نہ صرف ان کو سایہ نصیب ہوگا بلکہ اللہ کے مبارک عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور اس میں سے پہلا بندہ تھا عادل بادشاہ. ایک بندہ کسی عہدے پہ ہے اور اس عہدے پر اس نے انصاف کیا. اور اس حوالے سے ہم نے پچھلی مجالس میں یہ عرض کیا کہ کئی مرتبہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ ہے اور اپنا کام ہی کر رہا ہے نا، انصاف کر رہا ہے، اور اس پر اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی بڑی سعادت کہ قیامت کے دن اللہ والوں کی صف میں کھڑا ہوگا، تو اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے جواب دیا کہ انسان عدل و انصاف اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. تو جس عادل بادشاہ نے عدل و انصاف کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں خوب خوف خدا ہے. اس حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ انسان جب عدل نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، تو اس کی 4 وجوہات ہوتی ہے، اور ان 4 میں سے ہم نے 3 پہ گفتگو پچھلی مجالس میں کی. اور پہلی وجہ ہوتی ہے انسان ناانصافی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے طاقت کی وجہ سے، کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر بھی لی تو مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں ملنا ہے. اس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ ظلم کر سکتا ہوں. عورتوں میں جس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو علماء نے فرمایا کہ اگر طاقت کے بل بوتے پہ ناانصافی کی یا ظلم کیا تو اس کی پکڑ شدید ہے. سچی توبہ، بڑی توبہ نہیں کی تو یہ قابل مؤاخذہ چیز ہے. دوسری وجہ ظلم کرنے کی، زیادتی کرنے کی، کئی مرتبہ لا علمی ہوتی ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، تو کئی مرتبہ لا علمی کی وجہ سے انسان کر بیٹھتا ہے. اس حوالے سے ہم نے حدیث پاک بیان کی کہ ایک نوجوان نے آ کے اللہ کے نبی سے اپنے والد کی شکایت کی کہ جی یہ میری پرسنل چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ شکایت کرنا اس والد کے دل پہ بڑا گرا گزرا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو بھی اور تیری تمام چیزیں تیرے باپ کی جائیداد ہے. تو نوجوان نے جو شکایت کی لا علمی کی وجہ سے، کل کی مجلس میں ہم نے تیسری وجہ جو زیادتی کرنے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے ذہن میں تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، مگر اس نیکی کے کام کے دوران انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے. تو اس میں نیت اس کی بری نہیں ہوتی ہے، تو ایسی زیادتی بھی اللہ رب العزت جلدی معاف فرما دیتے ہیں. اور کل کی مجلس میں ہم نے اس کی مثال بھی پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے مسجد کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر سے ایک پر نالا ہوتا تھا، बारिश आई तो उस पर नाले से पानी गिर के मस्जिद में आ रहा था। नमाज पढ़ने वालों को तकलीफ हो रही थी तो हजरत, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन थे, आपने ऊपर नाला हटा दिया। हजरत अब्बास उस वक्त अपने घर में थे ही नहीं, तशरीफ ले गए थे कहीं सफर पे थे, वापस आए उन्होंने लगे जो पर नाला उतरा हुआ है। उनको पता चला कि जी अमीरुल मोमिनीन ने पर नाला नहीं, तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। हत्ता के हजरत उमर ने फरमाया कि जी इसका फैसला कर लेते हैं, तो क्योंकि इस्लामी अदालत कायम हो चुकी थी, हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह उन्हु को काजी बना दिया गया था, तो उन्होंने इस अदालत में फैसला सुनाया, केस हुआ। हजरत उमर ने फरमाया कि जी मुसलमानों को नुकसान हो, तो मस्जिद नबी में पानी आ रहा था तो इस वजह से बरनाला उतारा, कोई बुरी नीयत थोड़ी, मतलब उसमें क्या हो, कुछ जाती कोई फायदे के लिए तो नहीं। मगर हजरत अब्बास ने फरमाया कि जी ठीक है उनकी बात, मगर ये परनाला लगाया अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथों से। तो मैं इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत ने ये फैसला किया कि परनाला वापस लगाया जाए। तो कभी कभी इंसान ज्यादती करता है, वो तो अच्छी नीयत से कोई काम कर रहा होता है, मगर उस दौरान ज्यादती हो जाती है। तो चार वजूहात से ज्यादती होती है, एक ताकत की वजह से होती है, एक लाइल्मी में होती है, एक किसी अच्छे काम करते हुए अच्छी नीयत कर रहा होता है मगर उसके बावजूद भी ज्यादती हो जाती है, एक चौथी वजह भी होती है और वो होती है मजबूरी। इंसान को पता होता है कि है ये ज्यादती और मैं कर भी रहा हूं मगर मैं मजबूर हूं, आई हैव नो चॉइस। और हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आ ही जाता है, तो ये बड़ी बुरी सूरत हाल होती है। उसे अच्छी तरह से पता है कि मैं किसी के साथ जुल्म कर रहा हूं मगर कोई चारा भी नहीं। ऐसी सूरत हाल में शायद ने फरमाया कि दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस ज्यादती वाली सूरत हाल से इंसान को निकाले, तो तौबा भी करनी चाहिए। हमने अपने बड़ों से ये वाक्य सुना, पंजाब के एक गांव के अंदर मियां बीवी थे, उनका एक ही इकलौता बेटा था, गरीब थे ये दोनों मियां बीवी, मगर एक ही बेटा था तो बड़ी मोहब्बत, तो अपनी सारी ताकत लगा के उसको बड़ा पढ़ा लिखाया। हत्ता के जब उसकी यूनिवर्सिटी का वक्त आया तो माँ ने घर की काफी सारी चीजें और जेवर बेच के उसको यूनिवर्सिटी की पूरी तालीम दिलवाई और वो इंजीनियर बन गया। फिर शादी की, और शादी के बाद इंजीनियर साहब थे उनकी बीवी में और वालदा में खूब इख्तलाफ लड़ाइयाँ रहती। बीवी ये इंसिस्ट करती कि जी आप इस घर से निकले और हम अलग रहें, ये कहता था जी वालदैन बूढ़े हैं अकेले हैं उनको तो मैं कैसे छोड़ूं। बारह लड़ाइयां बढ़ती गई, वक्त ज्यादा हो गया, जब बहुत साल गुजर गए चंद साल, आखिरकार इन लड़ाइयों से तंग आके बीवी के कहने पे शहर के अंदर नौकरी तलाश की और नौकरी मिल गई इंजीनियर साहब को। तो ना चाहते हुए भी शहर चले गए हैं, और नीयत ये कि मैं शहर में ज्यादा कमाऊंगा तो वालदेन को पैसे ज्यादा भेज दिया करूंगा तो जिंदगी सुकून की गुजर जाएगी, मैं तो नहीं हूंगा मगर चलो अपने माल से वालदेन की खिदमत करूंगा। शहर में जाके सूरत हाल ऐसी रही, आना जाना भी लगा रहता था, शोहर अभी भी ताल्लुक बहुत ज्यादा रखता था, माल पैसे भी देता था अपने वालदैन को, बीवी को ये भी पसंद नहीं आया। तो कुछ अरसा गुजरा तो बीवी ने ये शोर मचा दिया कि जी मुल्क से बाहर नौकरी ढूंढे हैं। अब हमारे वसाइल बहुत कम हो गए हैं, हमें और वसाइल की जरूरत है। तो काफी अरसा तो उसको भी रेजिस्ट किया, मगर फिर लड़ाई झगड़े हंगामा घर में बढ़ता रहा, तो मुल्क से बाहर नौकरी ढूंढी और सऊदी अरब में नौकरी लग गई। अब सऊदी अरब जाने का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत मुलाकात महीने में 2-4 मरतबा वालदेन से हो जाती थी वो भी नहीं होगी। मगर झगड़ों को खत्म करने के लिए सऊदी अरब चले गए। अब ना वालदेन से मुलाकात हो रही थी और माल पैसे पीछे नहीं भिजवाया, बिल्कुल कट ऑफ हो गया। हर साल हज का जब मौका आता तो हज पे चले जाते। 13 साल गुजर गए और 13 साल पीछे कुछ पूछा ही नहीं, मगर 13 साल हज भी किया। 13वां हज मुकम्मल किया तो हज मुकम्मल करने के बाद हरम में जैसे आए तो वहां एक बुजुर्ग नजर आए, अल्लाह वाले नजर आए। उन्होंने पहले भी सुना हुआ था इन बुजुर्गों का, तो उनकी खिदमत में हाजिर हुए, बातचीत की और जारो कतार रोने लगे। हरम में बैठ के बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर दे के उब रोए। तो बुजुर्गों ने पूछा कि जी क्या हुआ? उन्होंने कहा, हजरत 13 साल से हर साल हज करता हूं और हर साल हज करने के 3-4 दिन के अंदर ख्वाब में एक आवाज आती है कि तेरा हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। और इस साल भी हज किया तो यही आवाज, ये कह के फिर रोने लगा। अल्लाह वाले बड़े साहिब बसीरत होते हैं। और पहला सवाल जो बुजुर्गों ने उससे किया वो यही था कि तेरे वालदेन जिंदा है? उसने कहा, हजरत वालदेन को पता नहीं है, 12-13 साल से उनकी कोई खबर ही नहीं ली है। और पूरा ये वाक्य सुनाया। हजरत ने कहा, 13 हज गया तो 1300 हज कर ले, तो अल्लाह को इसने वालदेन को ऐसे छोड़ दिया, ज्यादती है, ये जुल्म है। तो हजरत से गुफ्तगू जब हुई तो उसके बाद उसने नीयत कर ली कि मैं वापस आता हूँ वालदैन से मिलने के लिए। तो सफर का इरादा किया और चंद दिनों में वापस पाकिस्तान पहुंचे। 13 साल तक ना बूढ़े वालदैन को पूछा, ना कोई माल पैसे भिजवाए, ना कुछ। डर भी लग रहा था कि वालदैन नाराज भी होंगे। गांव पे पहुंचे, डर की वजह से जब अपने मोहल्ले में आए तो बंदा था गुजर रहा था, उससे ही वैसे पूछ लिया कि फला जो घर में बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं वो किस हाल में है। उसने कहा कि बूढ़ा बूढ़ी अब तो नहीं है, सिर्फ बूढ़ी है, वो जो बूढ़ा आदमी है वो तो फौत हो गया है, वालिद फौत हो गया, पता ही कोई नहीं। पर वो बूढ़ी भी अब बीमार रहती है, उसकी आंखों से बिनाई भी खत्म हो गई। सुना है कि उनका कोई बेटा था, बड़ा बदबخت, पिछले कई सालों से उसने अपने वालदैन को पूछा ही नहीं। अब और भी डर लगा, और भी अफसोस हुआ, और भी अपने आप को मलामत की। और डरते डरते घर के दरवाजे पे पहुंचा और यही सोच रहा था कि इस माँ के पास किस मुंह से जाओ, और इसने नाराज भी होना है, इसने मुझे बाहर निकाल भी देना है, इसने मुझे धक्के देने हैं कि जब पूछने का वक्त था तो तू आया नहीं। तो अल्लाह से माफिया भी मांग रहा था, दरवाजे पे भी था, अभी दस्तक ही देने वाला था तो वालिदा बूढ़ी अम्मा जो थी वो बाहर वाले सहन में लेटी हुई और ऊंची आवाज में अल्लाह से दुआ कर रही थी। तो दुआ के अल्फाज सुनने लगा तो बहुत सारी दुआएं की उस दौरान। फिर उसने कहा कि मेरे मालिक, मेरा शौहर भी इस दुनिया से चले गया, मेरी आंखें भी तूने ले ली है, मेरा एक बेटा है जो कई साल से मुझसे दूर है, अल्लाह अपनी रहमत कर दे मुझे उससे वापस मिला। ये वालदा की दुआ उस वक्त। इस दुआ को सुनकर बड़ी हिम्मत आई, फौरन अंदर गया, उसने कहा कि मेरी माँ मेरा माफ कर। और माओं को अल्लाह ने बड़ा जर दिया है औलाद के मामले। माँ ने कहा सब माफ है, सब आंख चली गई है तुझे देख नहीं सकती, तो तू मेरे करीब आ जा ताकि मैं तुझे अपने सीने से लगा। तो वालदा ने मोहब्बत का इजहार भी किया, इतनी बड़ी ज्यादती को बड़ी आसानी से माफ भी कर दिया। और फिर वालदा ही के पास वो रहते रहे हत्ता के चंद महीनों बाद वालदा का भी इंतकाल। वापस सऊदी अरब आए, अपनी नौकरी वापस से शुरू की, फिर हज किया और खुद फरमाते हैं कि अब जब हज किया तो चंद दिनों में ही फिर आवाज आई ख्वाब में, अल्लाह के यहाँ तेरा ये हज भी कबूल और तेरे पिछले सारे हज भी कबूल। अल्लाह, तो कई मरतबा इंसान मजबूर होके ज्यादती करता है, और अगर अल्लाह से दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह मुझे इस ज्यादती में से निकाल दे, और अल्लाह से माफियां भी मांगता है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाते हैं। बुजुर्गों ने एक उसूल बनाया है ज्यादती के हवाले से, इंसान के लिए बेहतर है अगर चॉइस है कि या तो जालिम बनेगा या मजलूम बनेगा, मजलूम बन जाना बेहतर, यानी जुल्म हो जाए ये बेहतर है बनिस्बत ये कि जुल्म कर दे। और ये जुल्म हो जाए अपने ऊपर, इसको नरमी कहते हैं, और ये नरमी करने वाले पर अल्लाह की रहमत होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने किसी के साथ ज्यादती की अल्लाह उसके साथ ज्यादती करे, जिसने किसी को नुकसान पहुंचाया अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जो किसी को मुशक्कत में डालेगा अल्लाह उसको मुशक्कत में डालेगा। तो जुल्म करने वाला बच नहीं सकता, तो इसलिए मजलूम बन जाना ये बेहतर। अगर ऐसा लगता है ना कि भाई मैं फलां को रियायत दूंगा तो ये उसका जुल्म है मुझ पर, तो वो रियायत दे के मजलूम बन जाना फिर बेहतर है बनिस्बत ये इंसान कहे कि नहीं मैंने सख्ती करनी। तो कयामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अर्श का साया नसीब, और उसमें सबसे पहला बंदा वो जो कि अदल और इंसाफ करने वाला बादशाह हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अदल व इंसाफ वाली वाला दिल नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.